एक्सक्लूसिव, रोज वैली पोंजी स्कीम घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे। जानें कि अब आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी सक्रिय रूप से रोज वैली पोंजी योजना की जांच कर रहा है और प्रभावित निवेशकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त संपत्ति निपटान समिति से सहायता लेने की सलाह दे रहा है। अदालत की सिफारिश पर 2015 में स्थापित इस समिति का उद्देश्य पीड़ितों को उनके निवेश की वसूली में मदद करना है। ईडी ने घोटाले से संबंधित 4,600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक ही ऑपरेशन में जब्त की गई 2,300 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है, जिसमें 2 दर्जन होटल और रिसॉर्ट शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों की नीलामी की जाएगी और आय का उपयोग धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। रोज वैली और उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 2014 में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में कुंडू की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में कोलकाता और भुवनेश्वर की अदालतों में कई आरोप पत्र दायर किए हैं। आरोपों से पता चलता है कि रोज वैली समूह ने अपने चिट फंड संचालन के लिए 27 कंपनियों का संचालन किया, जिनमें से केवल 6 सक्रिय रहीं, जो धोखाधड़ी गतिविधियों के व्यापक दायरे को उजागर करती हैं। रोज वैली मामले के सिलसिले में कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर 2013 से 2014 के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले पोंजी घोटालों पर ध्यान केंद्रित किया है। रोज वैली जैसी पोंजी योजनाएं निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाती हैं, लेकिन अपनी अस्थिर प्रकृति के कारण अनिवार्य रूप से विफल हो जाती हैं। रोज वैली ग्रुप ने उच्च रिटर्न या हॉलिडे पैकेज की पेशकश करते हुए अपनी हॉलिडे सदस्यता योजना के माध्यम से निवेश आकर्षित किया। घोटालों में विभिन्न धोखाधड़ी प्रथाएं शामिल थीं, जिनमें उच्च ब्याज दरों की पेशकश, रिफंड में देरी और सेबी और RBI द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों का उल्लंघन शामिल था। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स प्रतिबंध अधिनियम 1978 सहित विभिन्न कानूनों के तहत रोज वैली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की गिरफ्तारी पोंजी योजनाओं में शामिल लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती है और इस पर जोर देती है। ऐसी धोखाधड़ी गतिविधियों का निवेशकों और वित्तीय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।